ओम शांति। 31 दिसंबर 2016 की अव्यक्त मुरली से प्रश्नावली। बारह प्रश्न निकाले हैं। पीछे से चालू करते हैं। बारहवा प्रश्न, किन परिस्थितियों में याद और सेवा में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगती है? किन परिस्थितियों में याद और सेवा में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगती है? इसमें दो प्रश्न हैं, एक तो याद में मेहनत और दूसरी सेवा में मेहनत। तो कब ऐसा होता है जब याद में और सेवा में मोहब्बत की बजाय क्या लगती है? मेहनत। क्या कहेंगे? निमित्तपन का जब अभाव है तब याद में मेहनत लगती है। और मैंपन और मेरापन आता है तब स्वार्थ है, हद है, तब मेहनत लगती है। देहाभिमान है। किसमें? किसमें मोह? किसी और व्यक्ति में कोई भी विकार। और ज्ञान से बुद्धि अगर खाली है तो, धारणाएं अगर कम है तो, और सर्व संबंधी तेरे सम कौन है? अभी भी गीत बजा था, आज फिर तू कर्म अपने सिखला रहा, आसमां से हमको बुला रहा। अभी भी गीत बजाना, पौने पांच का। तो सर्व संबंधी तेरे सम कौन है? और वही निमित्त भाव नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का भाव नहीं है, मैं कर रहा हूं यह भाव है। किन परिस्थितियों में याद और सेवा में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगती है? जब जब श्रीमत का उल्लंघन होगा तब तब याद में मेहनत लगेगी। जब जब ब्रह्मचर्य का खंडन होगा तब तब याद में मेहनत लगेगी। जब जब कोई भी विकार की प्रवेशता होगी तब तब याद में मेहनत लगेगी। जब जब किसी भी एक धारणा की कमी होगी तब तब याद में मेहनत लगेगी। जब जब आलस और अलबेलापन होगा किसी भी रूप से तब तब याद में मेहनत लगेगी। जब जब किसी भी रूप से कोई ना कोई निराशा होगी, उदासी होगी, उमंग उत्साह कम होगा तब तब याद में मेहनत लगेगी। और संसार का कोई भी आकर्षण होगा, बुद्धि कहीं पर भी लटकी हुई हो, अटकी हुई हो, फंसी हुई हो, तो याद में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगेगी। यदि संबंधों में कड़वाहट है, संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट है, संबंधों में तनाव है, संबंधों में मिठास नहीं है, टकराव की स्थिति है, अलगाव की स्थिति है, तब तब सेवा में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगेगी। यदि सेवाओं में नाम की कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, तब तब मेहनत लगेगी। और तन की तंदुरुस्ती नहीं है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही आ गए। शारीरिक थकावट ज्यादा है, आराम पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, नींद कम हो रही है, तो सेवा में मेहनत लगेगी। जितनी नींद चाहिए पर्याप्त, शरीर में कोई भी बीमारी है तो भी फिर मेहनत लगेगी। और जो सेवा चाहिए वो नहीं मिल रही है, प्रेफरेंसेस, उस दिन सुनाया था ना, प्रेफरेंसेस ये भी देहभान है, देहभान की निशानी है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये खाना अच्छा लगता है, ये पहनना अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ये जो प्रेफरेंसेस है ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी है। और रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं है, बाबा ने कहा है बीच बीच में एकरस स्थिति, एकरस अवस्था का अभ्यास करो, कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज का अभ्यास करो, सुखमय स्थिति का अभ्यास करो, अतीन्द्रिय सुखमय अवस्था का अभ्यास करो, बीच बीच में ओम शांति स्वरूप में एक सेकंड में टिक जाओ। मन बाप ने कहा मन मना भाव, और एक सेकंड में टिक गए। ऐसा है, अगर नहीं है तो ठीक नहीं है, अगर सारी सभा नहीं हो सकती तो ये ठीक नहीं है। सभा एक, जादूगर एक, सबके दिल में एक, यही कमाल है, एक वो दिल अनेक, दिलाराम एक। परंतु अगर सब एक साथ नहीं टिक सकते एक जगह, फिर दूसरी जगह ये कहा है, मुरली दो पार्ट में विभाजित है, एक तो वो भाग है जिसमें प्रेम की कातिरेक है, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, और दूसरी तरफ है स्थिति बनाओ, कंट्रोल, अटेंशन, अवस्था, प्रैक्टिस, ट्रायल, अभ्यास। ये दूसरा भाग है मुरली का। पहला भाग है इधर कौन और उधर कौन, इसमें कौन और उसमें कौन, यहाँ अंदर कौन बोल रहा है, कौन से प्रेम के गीत और कौन सी प्रेम की कविताएं हैं, दिल क्या गा रहा है, दिल कौन से डांस कर रहा है, एक तरफ ये सारी बातें हैं, प्रेममय बातें, एक नहीं दो नहीं एक, एक में एक, एक जगह कहा है एक में एक, एक जगह कहा है दो नहीं है एक है, एक तरफ प्यार की बातें हैं, मोहब्बत प्यार, एक तरफ लाइफ कैसी हो, लाइफ हो तो ऐसी हो, जीवन सुखमय हो, जिंदगी, जिंदगी कैसी हो, सुखमयी शैया पर जैसे लेटे हुए हैं। एक उर्दू शब्द, एक इंग्लिश शब्द, एक हिंदी शब्द, तीन शब्दों का प्रयोग बाबा ने कहा है, जिंदगी ऐसी हो जैसे सुखमयी शैया पर लेटे हो, लाइफ हो तो ऐसी हो, और सुखमयी जीवन हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का और भाषा का प्रयोग है। जिंदगी, जिंदगी हिंदी वालों ने खींच लिया अपनी तरफ, नुक्ता है नीचे नीचे नुक्ता, जब नुक्ता लगता है तो उर्दू हो जाता है। तो किन परिस्थितियों में याद और सेवा में मोहब्बत उर्दू, मोहब्बत उर्दू नुक्ता है कि बजाय मेहनत लगती है, कर्म बंधन की रस्सियां बांधी हुई है, कर्मातीत स्टेज अर्थात सर्व कर्म बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त। अगले संडे की मुरली सभी नंबरवार है, ये कर्मातीत स्टेज नंबरवार है, ये सभा नंबरवार है, अधिकारी भी नंबरवार है। तो कित तख्त भी नंबरवार है अधिकारी का। तो अगर कर्म बंधन की रस्सियां बांधे हुए हैं, कर्म किया और इंस्टेंट फल की कामना है, तत्काल प्रशंसा, स्तुति, प्रसिद्धि, नाम, मान, गायन, तो सफलता उतनी नहीं होगी। किसी न किसी रूप से सूक्ष्म आलस्य है, सूक्ष्म अलवेलापन है, मोटा रूप और सूक्ष्म रूप, पिछले संडे की मुरली, अलबेलापन भी दो रूप, सब चलता है, सब चलता है, देख लेंगे, बाप भी कहते हैं देख लेंगे, ढूंढ लेना किसी ना किसी से अलबेलेपन के लिए, रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन, श्रीमत युक्त रैशनलाइजेशन, श्रीमत युक्त जस्टिफिकेशन। ये क्यों किया? श्रीमत के अनुसार किया, कारण तैयार है पहले से ही। अगर किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो कारण तैयार कर रखा है, क्योंकि ब्राह्मणों को संसार के कारण नहीं दिए जा सकते, उन्हें श्रीमत अनुसार ज्ञान के शब्दों में कारण अगर दिए जाए तो सामने वाला चुप हो जाता है। स्पिरिचुअल रैशनलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन, ये करना। वो एक कहानी है ना गधे की, एक गधा होता है जिसको उसका मालिक रोज नमक की बोरियां उसके पीठ पर लाद कर ले जाता है। चलते समय बीच में एक तालाब सा आता है जिससे उनको चलना होता है, तो गधा तो आलसी होता है पहले से। एक दिन अचानक तालाब को पार करते करते वो जो बोरी है वो नीचे गिर जाती है, तो वो तो नमक होता है, तो नीचे गिरने के बाद जब वो उठता है तो देखता है हल्का हो गया, तो उसे बहुत मजा आता है। पहली बार तो गलती से हुआ था ऐसा, पर दूसरे दिन सोचता है कि क्या ये रोज रोज की झंझट, दूसरे दिन जानबूझ के गिराता है तो और कम हो जाता है, वैसे ही कई दिन तक करता है। तो मालिक को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये जानबूझ के कर रहा है कि रोज नमक को गिरा देता है तो वो वजन उसका हल्का हो जाता है। तो मालिक एक दिन रुई भर देता है नमक की जगह कपास। फिर गधा वहां से जाता है और जैसे ही गिरता है तो बाद में फिर भारी हो जाता है। वो नमक क्या है और वो कपास क्या है इस ज्ञान योग में। श्रीमत यदि वो नमक है, बाबा ने कहा है, बाइबल में लिखा है, माय योक इज माइल्ड कैरी मी, मेरा वजन बहुत कम है, बहुत हल्का है, माय योक इज माइल्ड कैरी मी, टेक अप माय क्रॉस एंड फॉलो मी। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, मेरी जो याद है बहुत हल्की है। अगर आप कैरी नहीं करोगे और उसे बार बार उस गधे की तरह नीचे गिराओगे तो फिर धर्मराज क्या करेगा? कपास, जो भी भारी लग रहा है वो एक बार जब गिरेगा नीचे और फिर बाद में वापस भरोगे, वो धर्मराज की सजाए, वो मेंटल पनिशमेंट्स एक सेकंड में बहुत कुछ अनुभव कराएगी। तो किन परिस्थितियों में याद और सेवा में मोहब्बत की बजाय मेहनत लगती है? मुझे मेहनत का क्यों लगती है इसके ऊपर चिंतन करना है, और किन किन परिस्थितियों में किस किस समय कौन कौन से टाइम पर मेहनत लगती है। अगर मेहनत लग रही है तो जरूर कुछ तो कारण है, कुछ तो कमी है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिकना अर्थात क्या, उसकी 10 बातें बताइए। ओम शांति स्वरूप में टिकना, इसका पहला अर्थ है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अर्थात जब मैं ये कहता हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो कौन कौन सी 10 बातें हो जाती है। पहली, सबसे पहले घर में जाने से पहले मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ। एक, जैसे ही मैं कहता हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अपने निज स्वरूप में, मैं अपने अनादि स्वरूप में टिक जाता हूँ। दूसरा, मैं देहभान को भूल जाता हूँ, क्योंकि ये स्वमान की स्थिति है, इसके लिए देहभान स्वतः ही विस्मृत विसर्जित हो जाता है। तीसरा, मुझे अपने घर की स्मृति आ जाती है, ये जगत मेरा नहीं है, मेरा घर कोई और है, कोई दूसरा है। चौथा, अपने बाप की स्मृति आ जाती है, मैं शांत स्वरूप हूं तो वह अथांग सागर है, वह सागर है और मैं उसकी संतान हूं, मेरा सर्व संबंध ही तेरे सम कौन है, सर्व संबंध उसके साथ है। और कर्तव्य की स्मृति आती है कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो जब शांति का दान दोगे, शांत स्वरूप अपने स्वरूप में टिक जाओगे, याद में टिक जाओगे, तो विश्व में शांति का दान देते हो। तो कर्तव्य है टू रेडिएट पीस, संसार में शांति की किरणें फैलाना, अपने कर्तव्य की स्मृति आती है। नेक्स्ट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वातावरण शांत हो जाता है, वो उसी में आ गया कि मुझे मेरा कर्तव्य है अशांत को शांत करना। सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसे भी अनुभव कराना। और कितनी भी अशांति हो वातावरण में, परंतु मैं अशांत नहीं हो सकता। कितना भी पीसलेसनेस हो वातावरण में, बाहर की अशांति, बाहर की परिस्थिति, बाहर का व्यक्ति, बाहर की कोई भी अशांति की बात मुझे प्रभावित, इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं अपने शांत स्वरूप में टिकी हुई हूं, स्थित हूं। मेरी अचल अडोल अवस्था है, मेरी शांति की स्थिति इस संसार की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। यहां की कोई भी अशांति मुझे अशांत नहीं कर सकती। ये संकल्प ही कि मैं शांत स्वरूप हूं, इसका दूसरा अर्थ है कि यहां की अशांति मुझे अशांत नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि मैं अशांत नहीं हूं, तो ये भी एक बात है। और जैसे ही संकल्प कम, क्योंकि स्वमान की स्थिति है, स्वमान की स्थिति में संकल्प जो है, थॉट वेव जो है, वो कम हो जाते हैं। जितना मन अशांत उतनी बेचैनी, जितना मन अशांत उतनी अस्वस्थता, उतना तनाव, उतना स्ट्रेस, उतना टेंशन। एक बार सुनाया था ना, महात्मा बुद्ध को उनके शिष्य ने पूछा एक बार कि आप जिस करवट पे सोते हो, रात में सुबह देखता हूं उसी करवट पर हो, जहां हाथ रखा है बस वहीं है, क्या आप सोते समय भी जागे हुए रहते हो? जहां सोए हो बस वही है, जहां हाथ है वही हाथ है। नहीं तो रात में तो आदमी कहा, कोई कोई बेड का ही चक्कर लगा लेते हैं पूरा, कोई नीचे गिर भी जाते हैं धड़ाम से। हमारे पास ओपीडी में आते हैं लोग, क्या हुआ, रात में सोते सोते गिर गए, ऐसा भी होता है। एक भाई तो ऐसे थे, संडली पे सुबह अमृत वेला योग करा रहे थे, संडली पे बैठे बैठे गिरे, हेड इंजुरी संडली पर, सुबह अमृत वेला सेंटर पर योग कराते कराते, इतनी जबरदस्त नींद का प्रकोप। तो उन्होंने कहा, मेरा मन अंदर से इतना शांत हो गया है। करवटे तो व्यक्ति तब लेता है जब वो अशांत होता है, रात रात भर नींद नहीं आती, टॉसिंग ऑन द बेड, इधर उधर उधर उधर, उठ के बैठना सोना, ये तो तब होता है जब अशांत होता है, रात रात भर करवटे बदलते रहते हैं। हो सकता है ये भी एक सबकॉन्शियस सबलिमिनल पुरुषार्थ है, जो कि माइंड, वो कहते हैं कि सोते समय भी जैसे जागृत अवस्था में, वो नींद नहीं है, वो योग है। नींद की अवस्था में भी माइंड जागृत है, प्रैक्टिस से हो सकता है वो भी। तो एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिकना, अर्थात और क्या कहेंगे, जितनी पॉइंट सुनाई उससे भी ज्यादा। एक रस अवस्था है, एकाग्र अवस्था है, और वो बोल दिया, दूसरी तीसरी पॉइंट वही थी, शांति की अवस्था, मौन की अवस्था है। इस सीजन की पहली मुरली मौन, मन का मौन, मन की शांति, मौन, मन का डांस, ये जो स्थिति है, ये मौन की जो स्थिति है, डांस ऑफ साइलेंस, डांस ऑफ द साउंडलेस, डांस ऑफ द स्पीचलेस, अ डांस दैट टेक्स यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड, इस संसार से उस संसार में ले जाने वाला ये डांस है, ऐसा यह मन की स्थिति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, केवल ये शब्द, ये शब्द जब हम कहें तो इतनी बातें याद आनी चाहिए। अंदर ही अंदर मनन होते रहे, नहीं तो केवल कहने से कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर उसके अर्थ स्वरूप में टिकना। पिछले मुरली में कहा था बाबा ने, अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। एक मुरली पूरी ओम शांति पर चली, एक मुरली दिल्ली की सैर पर चली, एक मुरली राजधानी की सैर पर, एक मुरली मन के मौन पर चली, और ये मुरली अवस्था पर चल रही है और प्यार पर चल रही है। सागर की लहरें लहरा रही है। अगला प्रश्न, हमारी अवस्था हमारे हाथ में है, उसके लिए क्या किया जाए? कौन से वो संकल्प जरूरी है? मेरी अवस्था मेरे हाथ में। कल हम कह रहे थे ना, अवस्था और स्थिति में क्या अंतर है, किसी ने ये प्रश्न पूछा था। अवस्थाएं हम देख रहे थे, अवस्थाएं बहुत सारी होती है। बचपन 10 अवस्था मनुष्यों की, उसमें मृत्यु एक है, अंतिम दशम अवस्था बचपन। अलग अलग इस तरह से अवस्थाएं बताई। स्थिति सर्वोच्च है, तो हमारी अवस्था हमारे हाथ में, उसके लिए क्या किया जाए? समान में स्थित होने का अभ्यास किया जाए, आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया जाए, अशरीरीपन का अभ्यास किया जाए, विदेही स्थिति का अभ्यास किया जाए, अपने आदि अनादि। उत्तर सभी को सभी पता है, ऐसा शायद ही कोई उत्तर इसमें है कि जो पता नहीं है। इसके लिए क्या पूछे, सब संपूर्णता के नजदीक है। अपवित्रता से अविद्या और विस्मृति से अविद्या, कहा है हरि भाई? बराबर है ना? अस्मृत विस्मृति से और अपवित्रता से अविद्या हो जाए तो क्या हो जाएगा हरि भाई? कल की मुरली 18 जनवरी 75 की, ये संपूर्णता की समीपता है। दोनों चीजों से अविद्या हो जाए तो वरदान का कोर्स होगा। वो कोर्स तो बहुत करा लिया, सब भूले हुए थे। तो ये है वरदान का कोर्स कराना है आत्माओं को। हमारी अवस्था हमारे हाथ में है, और क्यों क्या से परे नहीं, पर उसके लिए करना क्या है? मैं मालिक हूँ, इसी मुरली में बाबा ने कहा है, मेरे अवस्था मेरे हाथ में, मेरी बुद्धि की स्टेज, मेरी बुद्धि मेरे जहां स्थित करना चाहूं वहां मैं स्थित कर सकता हूँ। मैं मालिक हूँ, इस धन का मालिक हूँ, इस मन का मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, रति हूँ। और जब रति ही मर जाता है तब अरथी निकलती है। अरथी का अर्थ पता है ना, जिसमें रथ नहीं, रति ही नहीं है, अरथी कहते हैं उसको। मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु, आत्मघात, जीवघात नहीं, आत्मघात। स्वमान का अभ्यास, मैं मालिक हूं इसका अभ्यास, जब अटेंशन यहां वहां जाता है तो मालिक चक्कर लगाता है, फिर मालिक भी चक्कर लगाता है। इस मुरली में बाबा ने कहा, अटेंशन यहां वहां जाएगा तो मालिक इधर उधर चक्कर लगाएगा। तो मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मैं इस देह का मालिक हूं, इस मन का मालिक हूं। समान का अभ्यास, अधिकारीपन की स्मृति, स्मृति को ही शक्तिशाली बनाना है। अवेयरनेस, ये जो स्मृति है सारा खेल उसी का है। जैसे अभी यहां बैठे तो स्मृति बहुत शक्तिशाली है, दिनचर्या में यही स्मृति कम कम होती है। अगर वहां पर भी ऐसी ही स्मृति हो जैसी सुबह हो तो शायद अवस्था नीचे ना आए। स्मृति बार बार याद दिलाना, बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। कितना भी कठोर हो सिल, कितना भी कठोर हो पत्थर, परंतु निशान पड़ेंगे। केवल करत करत अभ्यास। तो अवस्था अपने हाथ में रखने के लिए समान का अभ्यास करना है। कौन कौन से पेपर अचानक आने हैं? अरविंद भाई, ये आपका होमवर्क था, जिसके पास करने, बहुत पहले दिया था, जिसके जिसको पास करने के लिए पहले से मन को ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में कंट्रोल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूपी ग्रुप से भी बाबा ने कहा पेपर आने वाले हैं, पेपर आएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा बाबा ने वहां कहा समय ऐसा आने वाला है। दो इशारे, एक तो कहा समय ऐसा आने वाला है, एक जगह कहा पेपर आएगा, उसके लिए तैयारी चाहिए। तो कौन कौन से पेपर आएंगे इसकी भी कई बार चर्चा हो चुकी है, केवल लिस्ट गिना देते हैं। बोलो चर्चा है तो बहुत बार कर चुके हैं। पेपर अपने, अच्छा डायरेक्ट सूक्ष्म पेपर, परिवार से पेपर, लौकिक परिवार से पेपर, अलौकिक परिवार से पेपर, अलौकिक परिवार से भी पेपर आएगा। किसने मुरली पढ़ी थी अभी, चार पेपर, अरविंद भाई पहली मुरली 70 की। तन की समस्या है, मन की समस्या है, अलौकिक परिवार से पेपर, निश्चय पहला, निश्चय में तो पास है, दूसरा था तन की, तन का पेपर, फिर मन की समस्या और फिर अलौकिक परिवार संबंध, अलौकिक संबंध में यहां से पेपर आएगा। फिर प्रकृति का पेपर, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलमिटीज होगी, गवर्नमेंट की तरफ से पेपर, जैसे अभी आया था डिमोनेटाइजेशन का पेपर, नोटबंदी का पेपर आया, एक पेपर आया और हलचल, पांचों विकारों का पेपर, पांच तत्वों का पेपर, अपने पुराने संस्कारों का पेपर, प्राकृतिक आपदाओं का पेपर, लौकिक अलौकिक परिवार से पेपर, भटकती आत्माओं की तरफ से पेपर, शरीर का बीमारी का पेपर, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी यादें, पुरानी मेमोरी, पुराने भोग, पुराने हिसाब किताब, पूर्व जन्म के हिसाब किताब, सारे सामने आएंगे। और कौन से पेपर आएंगे? हाँ, साधना के मार्ग में पेपर, इच्छाओं के पेपर, नाम मान शान के पेपर, वो हो गया। और विकार में मोह, उसका विस्तार कर सकते हैं। आज किसका टर्न है? साधनों से पेपर आएंगे, साधन अचानक फेल हो जाएंगे, साइंस के साधन अचानक फेल हो जाएंगे तो पेपर, और बड़ी शांति हो जाएगी। और जो साधन में जो भी आवश्यक चीजें हैं, पानी, बिजली, बेसिक नीड्स, अन्न, ये सारी जो चीजें, अचानक इनका अभाव हो जाएगा। वो तो है, मीडिया का नेट बंद, टावर बंद, नेटवर्क बंद, सारे नेटवर्क या फिर बिजी, मेडिसिन, दवाइयां, डॉक्टर है, दवाइयां नहीं है, क्या करेंगे डॉक्टर? दवाइयां है पर डॉक्टर है नहीं, दवाई ले कौन सी? तो ये कुछ भी पेपर आ सकते हैं, पर चिंतन ये करना है मुझे क्या क्या पेपर आ सकते हैं, मेरी ऐसी कौन कौन सी कमजोरी है जिन्होंने सीधा मुझे गिरा दिया था पास्ट में, आंधी, तूफान, सुनामी, वो कौन से पेपर है उसकी चिंता। तो कितने हो गए आज क्वेश्चन? चार हो गए, और कल का दिन है। अच्छा, ओम शांति।